शिशु जो जो बड़ा होता है उसके भीतर की जटिलता प्रकट होती है। जो शिशु बड़ा ईमानदार था वह बड़े होने पर बहुत मिथ्यावादी हो जाता है। जो कभी चोरी नहीं करता था वह बड़े होकर के चौर्य कर्म करने लगता है। तो क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं, अरे ये शिशु कितना अच्छा है, बड़ा भोला भाला है, इसके भीतर में ईश्वरत्व का वास है, या बड़े हो जाने से इसके भीतर का पाप ही प्रकट होता है, तो चलो इसको हम बड़े नहीं होने देंगे, ऐसा हम कहते हैं? ऐसा तो तर्क हम नहीं देते कि हम बड़े नहीं होने देंगे। बल्कि अगर कोई शिशु बड़ा नहीं होता तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका विकास नहीं हो रहा है, कहीं ग्रोथ स्टंटेड है, तो आप देखिए जरा कहीं क्या बात हो गई है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो आदिवासी भोले भाले हैं, नैसर्गिक संस्कार, प्रकृतिगत संस्कार, सहज प्रेरणा, इंस्टिंक्ट, इसके कारण वे हैं। तो इसके कारण हम उन्हें वहीं रहने दें? नहीं, बल्कि उनके पास आलोक ले जाएं, बुद्धि ले जाएं, विचार ले जाएं, जटिलता उनके भीतर पैदा होगी। पर साथ ही साथ में यदि हम उनके पास अध्यात्म का स्वरूप भी ले जाएं तो वे आगे बढ़ेंगे, परंतु आगे बढ़ने से, बुद्धि के विकसित होने से जो जटिलताएं पैदा होती हैं वे जटिलताएं अध्यात्म के द्वारा नहीं हो पाएंगी। बच्चों को हम आगे बढ़ाएं, उनको विकसित होने में सहायक हो जाएं, पर उनके सामने कुछ ऐसा साहित्य रखें, ऐसे उनको ट्रेनिंग दें कि बड़े होने पर जो उनके भीतर के जो खराब संस्कार जब प्रकट होंगे तो खराब संस्कारों को रोकने की शक्ति उनमें आ जाए। यह शिक्षा का महत्व है, या इसी प्रकार की शिक्षा दे दें। तो ठीक यही बात है कि मनुष्य इस प्रकार से आगे बढ़ता है और यह विकास का क्रम है। और मनुष्य जब इस प्रकार विकसित होता जाता है, एक दिन उसके जीवन में आता है साधना के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा, कि वह मानो जिसको हम कहते हैं, हमने प्रारंभ में कहा था, अमीबा से जो विकास का क्रम निकला वह एक वर्तुल को पूरा कर लेता है, वृत्त को पूरा कर लेता है, उसके भीतर का देवत्व प्रकट हो जाता है। जैसे स्वामी जी ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके भीतर की दिव्यता प्रकट हो जाती है, वह धन्य हो जाता है। तो यहां पर भी वही कहा, कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह जो विदुर जी ने मैत्रेय जी को पूछा था, तो मैत्रेय जी ने यह सारा संवाद सुनाया और आपने भी स्वयंभू मनु के वंश का इतिहास सुनना चाहा था, सो इतिहास आपके समक्ष में रखा है। तो ये जो जितने थे प्रचेतागण थे, वे उसी प्रकार तपस्या करते हैं, उनके भीतर में जो हरि स्थित है उस हरि स्वरूपता का अनुभव प्राप्त करते हैं और अनुभव प्राप्त करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, मानो जीवन की सार्थकता उन्होंने प्राप्त कर ली, वे मुक्त हो गए। यह भागवत ग्रंथ इसी मुक्ति का आह्वान करता है, जितने शास्त्र ग्रंथ हैं इसी मुक्ति के लिए हमारा आह्वान करते हैं और कहते हैं आओ अपने स्वरूप को जान लो और मुक्त हो जाओ। तो यह प्रकरण है। अब जो अगली बार से कथा चलेगी वह पांचवें स्कंध को लेकर के आरंभ करने जा रहे हैं। बीच में ग्रीष्म की छुट्टियों के कारण प्रवचन का कार्यक्रम वैसे भी बंद रहता है, पर बाहर जाने का कार्यक्रम भी बहुत बनता रहा, इसीलिए भागवत प्रवचन माला का कार्यक्रम बहुत दिनों से हो नहीं पाया था। तो आइए अब पुनः इसका प्रारंभ करें, शांति पाठ कर लें और फिर विषय में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। वंशी विभूषित करान नवनील दाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूनेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
भागवत पर जो पिछली चर्चा हम लोगों ने की थी उसमें चतुर्थ स्कंध पर विचार किया था और अंत में चतुर्थ स्कंध के वह प्रसंग देखा था जब प्रचेताओं की कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं और इस प्रकार उत्तानपाद से लेकर के जो चल रहा था चरित्र चित्रण वह यहां पर समाप्त होता है। सुखदेव जी चौथे स्कंध के अंत में कहते हैं परीक्षित जी से, राजन यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ, अब प्रियव्रत के वंश का भी विवरण सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। यह वे परीक्षित से कहते हैं और जिस समय सुखदेव और परीक्षित का यह संवाद मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं तो विदुर जी प्रेममग्न हो जाते हैं। भक्ति भाव का उद्रेक होने के कारण उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगती है और उन्होंने अपने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मैत्रेय जी के चरणों पर स्थापित कर दिया कृतकृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए। और फिर विदुर जी वहां से चले जाते हैं धन्यता का अनुभव करते हुए। अब पांचवें स्कंद से जो कथा का क्रम है वह परीक्षित और सुखदेव के बीच वार्तालाप के रूप में निबद्ध है। अभी तक जैसा हमने कहा कि सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं उसी प्रकार मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं और मूल जो कथा के वाचक हैं या कथाकार हैं वे तो साक्षात सुखदेव जी हैं जो परीक्षित जी को सुनाते हैं। तो चौथे स्कंध तक ध्रुव के पिता उत्तानपाद के वंश का चरित्र चित्रण हुआ और अंत में जैसा हमने देखा यह कहा सुखदेव जी ने परीक्षित से, उत्तानपाद के भाई थे प्रियव्रत। अब प्रियव्रत का चरित्र चित्रण वंशावली का चरित्र चित्रण तुम्हें सुनाता हूं। तो यहां पर प्रियव्रत के चरित्र का उनके वंश में जो महापुरुष हुए उनके चरित्र का यहां पर चित्रण किया गया है। अब वैसे देखा जाए तो इस पंचम स्कंध में दो महान चरित्र हमारे समक्ष आते हैं। एक तो ऋषभदेव का है और दूसरा जो चरित्र आता है वह उनके पुत्र भरत का। ये वही भरत हैं जो हिरण के शावक को इतना प्यार करते हैं कि अंत में मरने के बाद वे हिरण योनि में जन्म लेते हैं और वे ही जड़ भरत के रूप में बाद में जन्म लेते हैं, जिनके नाम से यह भारतवर्ष कहलाता है या भरतखंड कहलाता है। इन दोनों के चरित्र का चित्रण यहां पर हुआ है और वैसे यहां पर और भी वंशावली बताई गई, पर उस वंशावली के माध्यम से हमें केवल इतना ही ग्रहण करना है कि किस प्रकार ये लोग राजा होते हुए भी अपना सब कुछ छोड़ करके अंत में वन में चले जाते हैं, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करते हुए कैसे वे ईश्वर ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। केवल इतनी बात हमारे लिए शिक्षा का विषय है। और यहां पर वैसे पांचवें स्कंध में और विशेष कुछ अधिक नहीं है। पांचवें स्कंध के अंत में विभिन्न नरकों का वर्णन है कि मनुष्य यदि अमुक प्रकार का दुष्कर्म करता है तो कौन से नरक में जाता है, इसका वर्णन यहां पर किया गया है। आप जानते हैं कि मनुष्य दंड और पुरस्कार इन दो प्रकार की प्रेरणाओं के द्वारा कार्यरत होता है। यदि उसे किसी में पुरस्कार मिले तो वह उस कार्य की ओर उन्मुख होता है, यदि उसे दंड प्राप्त हो तो उस कार्य से विमुख होता है। तो सामान्यतः जब हम धर्म में बहुत ऊंचा उठे हुए नहीं होते तो हमारे लिए प्रलोभन की भी आवश्यकता होती है और उसी प्रकार डर का भी प्रयोजन होता है। तो प्रलोभन देने के लिए स्वर्ग का वर्णन है, किन किन कर्मों से कैसे स्वर्गों की प्राप्ति होती है, और वहां पर दंड का भी वर्णन है कि यदि हमारे दुष्कर्म इस प्रकार के हों तो हमें किस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है ताकि मनुष्य दुष्कर्म करने से रुके, उसके मन में दुष्कर्म करने के प्रति एक अवरोध उत्पन्न हो, यह इस विवेचन का मर्म है। तो स्वाभाविक ही यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर्ग और नरक क्या ये केवल कल्पनाएं हैं या मनुष्य को पुण्य के लिए प्ररोजित करने के लिए स्वर्ग की कल्पना कर ली गई और उसे दुष्कर्मों से विरत करने के लिए नरक की कल्पना की गई, क्या केवल ये काल्पनिक हैं अथवा वास्तविकतः ये लोक हैं। इस विषय का हम लोग विश्लेषण कुछ बाद में करेंगे जब यह स्वर्ग और नरक का विषय यहां पर हमारे समक्ष आएगा। स्वामी विवेकानंद किस प्रकार इस स्वर्ग और नरक को देखते हैं इसकी चर्चा भी उस संबंध में आपके समक्ष करेंगे। उनका जो दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक मालूम पड़ता है और इसीलिए उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। अब जो पांचवा स्कंध है वह परीक्षित के प्रश्न से शुरू होता है। राजा परीक्षित पूछते हैं शुकदेव जी से कि महाराज, आपने बताया कि प्रियव्रत राजा को नारद जी ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया और आपने यह भी कहा कि वे गृहस्थाश्रम में जाकर के राज्य पाठ भी करते हैं, तो आत्मज्ञान का उपदेश लेने के बाद उनको गृहस्थाश्रम में रुचि कैसे होती है। जब नारद जी ने उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया होगा तो स्वाभाविक ही उनके हृदय में संसार के मिथ्यात्व का अनुभव हुआ होगा। यदि अनुभव हुआ तो फिर वे संसार में प्रविष्ट ही कैसे हुए, गृहस्थाश्रम का स्वीकरण उन्होंने कैसे किया। बस यह मैं जानना चाहता हूं। हे विप्रवर, निश्चय ही आप यह मुझे बताइए कि महाराज प्रियव्रत की गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई। वे तो बड़े भगवत भक्त थे, आत्मपरायण थे, आत्माराम थे, तो ऐसे गृहस्थाश्रम में उनकी रुचि कैसे हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में फंस जाता है। निश्चय ही ऐसे निस्संग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर के शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी भी अनुरक्ति नहीं हो सकती। तो ब्रह्मन, मुझे इस बात का बड़ा संदेह हो गया है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री घर और पुत्रादि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई, यह प्रश्न बीज है और इसी के उत्तर में यह पांचवा स्कंद है। अब सुखदेव जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि तुमने ठीक ही पूछा, प्रियव्रत बाल्यकाल से ही भगवत भक्त थे, उनके हृदय में इस संसार के भोगों के लिए किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी और फिर उनके पुण्य का उदय होता है, देवर्षि नारद जैसे परमहंस व्यक्ति उनके जीवन में आते हैं और वे आकर के स्वयं आत्मविद्या का उपदेश देते हैं, पर ब्रह्मा जी सृष्टि का चालन करना चाहते थे तो ब्रह्मा जी उपदेश देने के लिए प्रियव्रत के पास आते हैं। अब यह क्रम आपने शायद ख्याल किया होगा कि प्रजापिता हैं ब्रह्मा, उन्हें प्रजापति नियुक्त करने का अधिकार है, भिन्न भिन्न प्रजापतियों को उन्होंने नियुक्त किया, तो यह जो मानव वंश चला है उसके प्रजापति हैं स्वयंभू और मनु। हमने कई मनुओं की गाथा का यहां पर उल्लेख किया है। यह जो मानव वंश चला है पुराणों की परंपरा के अनुसार स्वयंभू मनु से प्रारंभ होता है, इसीलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। अब स्वयंभू मनु के ये दोनों के दोनों पुत्र हैं, उत्तानपाद भी हैं और प्रियव्रत भी हैं। अब ब्रह्मा जी संसार का विस्तार करना चाहते हैं और हमने प्रारंभ में देखा था कि वे इसीलिए अपने मानस पुत्रों को इस संसार की ओर आकृष्ट करते हैं, उनके पुत्र हुए सनक सनंदन इत्यादि, उन्होंने गार्हस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, वे तो आजन्म ब्रह्मचारी का व्रत लेकर के विचरण करते रहे। उन्होंने सोचा था कि नारद जी भी गार्हस्थ धर्म का स्वीकरण करेंगे, पर नारद जी ने भी नहीं किया, वे भी आजन्म ब्रह्मचारी रह करके भगवान का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं, प्रभु की महिमा का गायन करते हुए, जिससे मनुष्य संसार की माया में न फंसे। अब इसलिए ब्रह्मा जी को चिंता होती है, उन्होंने इन पुत्रों को उत्पन्न तो किया इस संसार का विस्तार करने के लिए, पर विस्तार करने से पहले उन्होंने इन ज्ञानी पुत्रों को भी पैदा किया। ब्रह्मा जी का तात्पर्य यह था, जैसा कि पुराणों में हम पढ़ते हैं कि ज्ञान यह संसार का आधार है, जब तक व्यक्ति ज्ञान में स्थित नहीं है तब तक वह ठीक ठीक संसार धर्म का पालन भी नहीं कर सकता, व्यक्ति संसार में फंस जाता है। और यह जो संसार है वह केवल फंसने के लिए नहीं है, मनुष्यों के समक्ष एक आदर्श उपस्थित करने के लिए है कि मनुष्य संसार आश्रम में रहे और उसमें रहते हुए कैसे वह भगवत भजन कर सकता है और धीरे धीरे यहां की वासनाओं को निशेष करके भगवान के चरणों के पास कैसे पहुंच सकता है, इसका उदाहरण ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के माध्यम से रखना चाहते हैं। पर ये ऐसे हैं, सनक संदन इत्यादि पुत्र, नारद इत्यादि पुत्र, ये संसार में फंसना ही नहीं चाहते। सब भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितिम चिकीर्षुः मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापति प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्यामास वेदोक्तम। यह यहां पर हम पढ़ते हैं भगवान शंकराचार्य का भाष्य। गीता के प्रारंभ में उन्होंने भाष्य लिखने से पूर्व यह लिखा, संबंध भाष्य लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, तो भूमिका का पहला वाक्य यही है, सब भगवान वे जो भगवान हैं सृष्ट्वा इदम जगत, इस जगत का सर्जन तो उन्होंने किया। तस्य च स्थितिम चिकीर्षुः, इस जगत का सृजन करके इसकी स्थिति करने की इच्छा से उन्होंने मरीच इत्यादि प्रजापतियों को पहले उत्पन्न किया और उनके भीतर में प्रवृत्ति रूप धर्म को प्रविष्ट किया। प्रवृत्ति रूप धर्म का मतलब है जिससे संसार फैले, यह प्रवृत्ति है। निवृत्ति का मतलब हम संसार से दूर जाते हैं, ईश्वर की ओर जाते हैं। प्रवृत्ति का मतलब हम संसार में चले जाते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां साक्षात भगवान उत्पन्न करते हैं। प्रवृत्ति इसलिए कि संसार बढ़े, विस्तार को प्राप्त हो, और निवृत्ति इसलिए कि मनुष्य संसार में फंसा न रहे बल्कि उस संसार से निकल करके, संसार के कीच से निकल करके अपने को भगवान के चरणों के पास ले जाए। इसलिए वे दो प्रकार के धर्म, प्रवृत्ति रूप धर्म और निवृत्ति रूप धर्म पैदा करते हैं। ततः अन्यान च सनक सनंदनादीन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यामास। निवृत्ति का जो लक्षण है वह क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो यह ज्ञान और वैराग्य निवृत्त रूप जो लक्षण है, निवृत्त रूप धर्म का जो लक्षण है, उसको वे दूसरों में प्रविष्ट कराते हैं। तो सनक सनंदन इत्यादि, नारद जी इत्यादि कैसे हैं? निवृत्ति के मूर्तमान स्वरूप। और ये कैसे हैं? ये मनु इत्यादि, ये प्रवृत्ति के मूर्तिमान स्वरूप। इन दोनों की आवश्यकता है, एक से सांसारिक कल्याण, दूसरे से आध्यात्मिक या आत्मिक कल्याण, एक से संसार का ज्ञान और दूसरे से आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, और ये दोनों ज्ञान हमें चाहिए। इस प्रकार का मत हमारे शास्त्र रखते हैं और इसीलिए कणाद ऋषि ने धर्म की एक व्याख्या अपने ढंग से की।